आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। जहानत के लिए नेकी और पाकीज़गी भी दरकार है। यानी बहुत सारे लोग ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन नेक और पाकीज़ा नहीं है। तो फ़ायदा क्या हुआ उस जहानत से? ऐसी स्मार्टनेस जो क्लेवर हो जाए वो स्मार्टनेस नहीं रहती। ये लिखते हैं कि बीबीसी से ये खबर मैंने सुनी कि मशहूर मुसन्निफ़ यानी राइटर और नोबल इनाम याफ्ता अदीब नजीब महफूज पर कातिलाना हमला किया गया। मुझे उनकी किताबें याद आईं जो इससे कबल पढ़ी थीं। मुझे हैरत है कि इतना ज़हीन आदमी ये समझने से कासिर है कि हकीकत ख्याल से बड़ी और हमेश की फना से बरतर है। आसमानी असूल ज़मीनी असूल से बढ़कर हैं। यानी आप देखिए कि इनको नोबल इनाम तक मिल गया लेकिन इन पर कातिलाना हमला हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा एक इंसान एक ऐसी फील्ड में होता है, मास्टर है, टॉपर है, दूसरी कालिफ बे भी नहीं जानता। तो फितरत का असूल याद रखिएगा, आसमानी असूल ज़मीनी असूल से बढ़कर हैं। यानी ज़मीन पे हमने जो असूल बनाए या हमारे साथ बनाए गए, आसमानों पे जो अल्लाह की तरफ से असूल बने हुए हैं वो इससे बहुत बड़े हैं। क्या वो जो हक़ की रहनुमाई करता है इत्तबा का ज़्यादा हकदार है, या वो जो खुद रास्ता भी नहीं पा सकता जब तक इसे बताया ना जाए? नजीब महफूज ने अपने ज़रख़ेज़ ज़हन और दिक्कते नज़र यानी क्लोज़ IQ लेवल यानी अच्छा देखने का तरीका और कुव्वते अर्ज़ो जज्बात यानी जज्बात को पेश करना, बरांगीख्ती से काम लेकर ड्रामे और फन पारे लिखे हैं, लेकिन आखिर तज्ज़िये में वो गैर सही और नाकामी है। नजीब की ज़िंदगी के मुताले से एक बात बड़ी समझ में आई कि खुशनसीबी ये नहीं कि दूसरों की खुशी और राहत की कुर्बानी पर आपको खुशी और राहत मिल जाए, या आप अफसरदा और गमगीन हो और कोई खुशी मनाए। बाज़ मुसन्निफ़ीन बाज़ तरह नो यानी नया तरीका डालने वालों की तारीफ़ यूँ करते हैं कि वह अपने सोज़े जिगर से दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हैं, लेकिन सही बात और सही तरीका ये है कि आदमी खुद भी रोशनी में रहे और दूसरों के लिए भी मीनारे नूर बने। इसका दिल भी खैर हिदायत और रोशनी की अमाजगाह होता है, ताकि दूसरों के दिल और रूह भी आबाद हों। लेकिन नजीब महफूज की तहरीरों में आखरत और आलम गैब का कोई निशान नहीं मिलता। हाँ इसके हाँ, ख्याल, तस्वीर, दुनिया, शोहरत, जाज़बियत और जज्बात निगारी है, लेकिन हक, मकसद, मिशन और अहद के जलवे कहाँ हैं? नजीब महफूज ने दुनिया में जो मुकाम बनाया हासिल कर लिया, और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम दुनिया में इनको और उनको सबको दिया करते हैं, यानी मुसलमानों को भी गैर मुस्लिमों को भी, तेरे रब की अता है और तेरे रब की बख्शिश को कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन इतना काफ़ी नहीं कि आदमी जो चाहे पा ले, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आदमी जो चाहता है वहाँ तक इंसान पहुँचे। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए तुमसे पहलों के तरीके और रास्ते खोल खोल कर बयान कर दे, तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे जबकि ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले तुम्हें बिल्कुल गुमराह कर देना चाहते हैं। बाखुदा मैं किसी के जन्नत में या जहन्नम में जाने का फ़ैसला नहीं कर रहा, ये तो शरा का काम है यानी अल्लाह का काम है कि वो डिसाइड करे। शरई दलाइल ही इसका फ़ैसला करते हैं। यहाँ तो लोगों के अकवालो आसार और आमाल पर एक नज़र डाली जा रही है। यकीनन आप इन्हें इनकी बात की ढब से पहचान लेंगे। सूरत मुनाफिकून आयत 30 में अल्लाह ताला ने निफाक की अलामतों में से एक बात बयान की, काश के सभी लोग हिदायत याफ्ता होते और जन्नत में जाते जिसका अर्ज़ ज़मीन व आसमान है। कहना यह है कि अगर इंसान के पास किसरा की बादशाहत और कैसर का इकतदार भी हो लेकिन दिल पर बातिल छाया हो, खैर की उम्मीद खो गई हो, तो इसको इन सब से क्या मिलेगा? सलाहियत अगर निजात का सबब ना बने तो इसका नफ़ा और समरा क्या है? तो क्या पता चला, थोड़ा सा मुबहम था टॉपिक, लेकिन खुलासा कर देती हूँ कि ज़हानत का गलत इस्तेमाल बायसे हसरत होगा। वो कब जब आप अल्लाह की दीवी जहानत को सिर्फ दुनिया कमाने के लिए लगाएं। ऐसे लोगों की मिसाल गधों की हैं कि जो दीन के नाम पर किताबों का बोझ तो उठाते हैं, ज़हीन बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को पहचान न सके और पहचान कर भी इनकार किया। यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम। फिर ऐसी बात कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जो एक बेजान चीज़ की पूजा करते हैं। ज़हीन तो बहुत हैं लेकिन چھوٹی سی حقیقت نہ سمجھ سکے کہ قل ہو اللہ احد. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سارے کرسچینز بہت ذہین ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے. پھر سر آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی دیوی عقل کو اللہ کے خلاف اللہ کے نبیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت کی رسوائی اور دنیا میں مسلمانوں کی دشمنی. تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ عقل بھی دے تو عقل سلیم. اور اس پہ ایک لیکچر بھی مجھے یاد آ رہا ہے بہت پہلے کی سیریز ہے کہ عقل عیار ہے, ہوشیار ہوتی ہے. عقل بندے کو ہمیشہ اس کا اپنا فائدہ سکھاتی ہے اور بعض دفعہ پھر دوسروں کا نقصان بھی انسان کرنے لگتا ہے. صاحب جمال بنیے, کائنات بھی حسین لگے گی. نیکسٹ ٹاپک ہے, یعنی اگر آپ خود خوبصورتی کا ایک مرقہ بن گئے نا تو پوری کائنات خوبصورت ہوگی. شریعت کے دائرے میں ہمیں زندگی کی تمام خوشیاں اور دل فریبیاں حاصل ہوں تو سونے پر سہاگا ہے کہ اللہ نے ہی دلکش باغات بنائے ہیں. وہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اس کی دلکش تخلیق میں ہمیں وحدانیت کے آیات پڑھنی چاہیے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام مخلوقات پیدا کر دی ہیں. اچھی خوشبو, لذیذ کھانا اور دل فریب منظر سے شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے, روح کھل اٹھتی ہے. جو زمین میں ہے اس سے حلال طیب کھاؤ. حدیث میں ہے کہ تمام دنیا میں سے دو چیزیں میرے لیے محبوب بنائی گئیں, خوشبو اور عورتیں, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. واقعہ یہ ہے کہ تاریک خیال زہد اور اندھے تقوی نے جو زیادہ خود ساختہ ہیں ہم میں سے بہت سو کی زندگی سے خوشیاں چھین لیں اور زندگی کا رنج و فکر, بھوک پیاس, تجرد کہتے ہیں خام خواہ خود کے اوپر سختی برتنا, اور شب بیداری بنا کر رکھ دیا. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, شادی بھی کرتا ہوں, گوشت بھی کھاتا ہوں, بس جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بعض گروہوں نے خود ہی سے اپنے آپ کو مختلف چیزوں کا پابند بنا لیا. یہ تر چیزیں نہ کھائے گا, وہ ہنسے گا نہیں, یہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا. کیا عجیب بات ہے, جیسے بیچاروں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ نفس کی تعذیب ہے, اس کی روشنی کو ماند کر دینا ہے. یعنی بلا وجہ بورنگ لائف نہیں گزارنی چاہیے. حلال حلال ہے, حرام حرام ہے. آپ ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ ہے؟ تو بہت سارے لوگ زندگی میں ایسے کام عموماً نیکی اور تقویٰ کے نام پہ کرتے ہیں, اور ایسے لوگ پھر بعد میں جا کر دیکھیں گے کہ نہ دنیا کا فائدہ ملا اور نہ آخرت کا فائدہ ملا, اور ایسے لوگ اپنی زندگیوں کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین کے نام پہ اپنے آپ کو بہت پیچھے ڈالنا اور لوگوں کی نظروں میں بڑے ہی نیک ہیں آپ, لیکن لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے. لکھ لیجئے ایک چیز, کہنا چاہیے آخری لفظ تو نہیں ہے لیکن عموماً ایک بات ہے, سچے دیندار سے لوگ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ خود عمل نہیں کرتے تو بھاگتے ہیں, دور ہوتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھ نہ لے, ہمیں یہ نہ کر دیں, لیکن اس کے باوجود بھی دل میں پیار ہوتا ہے. اس کے برعکس وہ عالم جو دین کو نرم سے نرم کر کے کیوں نہ دکھا دے, چاہے لوگ ان کی باتیں خوشی سے مانیں, ہاں بڑی نرم بات کرتے ہیں لیکن دل میں پیار نہیں ہوتا. حق کا ایک وزن ہے, حق میں ایک کشش ہے. بہت بڑا اٹریکٹنگ پوائنٹ ہے حق کہ جو انسان کو دوسری چیزوں میں لے جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہہ دو کہ اللہ نے بندوں کے لیے جو زینت اور پاکیزہ رزق اتارا ہے اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ یعنی کیوں آپ اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوششوں میں؟ ہمارے رسول دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے. آپ شہد استعمال فرماتے تھے کیونکہ اللہ نے شہد اسی لیے بنایا ہے کہ کھایا جائے. آپ سوچیں نا, شہد سے آپ کوئی چیزیں تھوڑی جوڑیں گے, کوئی سلوشن تو نہیں ہے جو آپ کی چیزوں کو جوڑے, شہد کھانے کے لیے ہوتا ہے. اور شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایسا مشروب نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. آپ نے بیواؤں اور کنواریوں سے شادی بھی کی, اور جو عورتیں پسند ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے شادی کر لو. سورت النساء کے بالکل آغاز میں اللہ نے یہ بات بتا دی. آپ نے عید وغیرہ میں بہترین کپڑے بھی پہنے. ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, اللہ سورت الاعراف میں فرماتے ہیں, آیت 31 ہے. یعنی نبی روح کا حق اور جسم کا حق دونوں ادا کرتے تھے, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے تھے, کیونکہ دین فطرت لے کر آئے تھے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. तो क्या सीखा? कि बिलावजह अपने ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, अपने अंदर कशिश रखिए, खूबसूरत रहिए, खूबसूरत कायनात को देखिए, अल्लाह की नेमतें जन्नत की नेमतों की रग़बत दिलाएंगी। कायनात की खूबसूरती देखकर तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पे प्यार आता है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जैसे बेजान चीज़ें तस्बीह करती रहती है ना, आपकी ज़ुबान पे भी आम तौर पे अल्लाह ताला की हम्द के तराने रहेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं है, इंसान को जमाल इख्तियार करना चाहिए। साहिब जमाल ख़ुद भी खुश होता है, दूसरे भी, और फिर ऐसे लोगों से इस्लाम की मोहब्बत बढ़ती है लोगों के दिलों में कि मुसलमान इतने अच्छे होते हैं, इतने नाइस, इतने साफ, इनसे बैड स्मेल भी नहीं आती, इनका टेस्ट कितना अच्छा है। देखिए फितरी तौर पर लोग खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं, बच्चा भी होता है। आप कभी बच्चे को देखें, किसी ने लिपस्टिक लगाई हो ना, तो बिल्कुल छोटा 1-2 महीने का बच्चा भी उस औरत को देखता रहेगा, उसको कशिश लगती है। आप डार्क कलर पहने या बच्चे के सामने कोई गहरी चीज़ रखे, मुस्तकिल उसको ताड़ेगा, अल्लाह ने रखे उसमें, तो आप क्यों शर्मिंदा हैं? तो लेकिन मकसद नहीं हो ज़िंदगी में एक बंदा आप स्टैचू ना बन जाए, लेकिन साफ़ सुथरे रहिए, आपकी सोच पाक, आपका घर साफ़ सुथरा। अब अगर घर में 4 चीज़ें हैं और एक रंग की रख ली तो कोई गुनाह हो गया? यानी मैचिंग करने से आपका तकवा ख़राब हो जाता है। आपने स्कार्फ लेना ही था, दुपट्टा भी लेना था, आप अगर मैचिंग का ले लेते हैं तो कोई गुनाह की बात है? आपके पास रखा था, आपने उसी के साथ उसका स्वेटर भी पहन लिया, तो क्या आप बहुत बड़े दीन से दूर शख्स बन गए? नहीं, गलत चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट देकर लोगों को अपने दीन से दूर किया, क्योंकि लोग ये चीज़ें अपनी छोड़ना नहीं चाहते। और आप कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से पहले ताल्लुक़ तोड़े फिर आप दीन में आएंगे, तो याद रखिए ये ज़ाहरी तकवा होता है, असल तकवे से इसका कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। कई दिल के गनी होते हैं, बादशाह, फकीर हैं अंदर से, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, और कई उलट हैं, बाहर से बड़े मस्कीन, जी हम तो बड़े ही मस्कीन हैं, अंदर से हटके पक्के होते हैं, रौनत होती है, बड़ाई का एहसास होता है। नेगेटिव आप उनकी बात सुने, आधी बात में दूसरों की बुराइयाँ ही होती हैं। हिम्मतें तोड़ने वाले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो कुछ डीमोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो अच्छे रहिए, साफ सुथरे रहिए, बी नेचुरल, बी नेचुरल। अल्लाह ने सादगी में भी बड़ा हुसन रखा है। फिर सही मुस्लिम की रिवायत 265, आपने फरमाया जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने कहा कि इंसान चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसके जूते अच्छे हों। आपने फरमाया इन्नल्लाह जमील उन जो हिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है, जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक़ को कबूल ना करना और लोगों को हकीर जानना है। इसी तरह बुखारी की रिवायत है 3549, हुस्न और जमाल में आप सबसे बढ़कर थे, जिस्मानी साख्त में भी सबसे बेहतर थे, और आपका कद ना बहुत लंबा था और ना बहुत छोटा। यानी इंसान मायूब लगता है, बहुत लंबा भी हो या छोटा। अब ये आपके इख्तियार में तो नहीं था ना, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को ज़ाहरी हुस्न भी दिया ताकि वो एक लीडर बने। और याद रखिए इमामत और लीडरशिप के दर्जे पे पहुंचने में एक बहुत बड़ा किरदार होता है। फिर क्या सीखा अभी तक जितने मुख्तलिफ टॉपिक देखे हैं? खुलासा कि दीनी दुनियावी मामलात में मियानारवी से नहीं हटना, फिर अपनी सलाहियतों को पहचान कर इन पर काम करना है। अगर आपकी गालिब सिफात अच्छी हैं तो लोग आपको जो मर्ज़ी कहें आप उनमें अच्छे ही मशहूर होंगे, और ज़हानत को नेकियों के काम में लगाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दलील सुबह रोशन है सितारों की तुंग ताबी। आदों को नहीं समझ आई होगी जो मेरा गुमान है आप सबके बारे में, क्योंकि उर्दू हमारी बड़ी कमज़ोर है, और वो भी जबकि हम दूसरे मुल्कों में जाकर रहने लग गए। तो आइए ज़रा इसका मतलब समझिए। एक मुअल्लिफ़ यानी राइटर जो मुख्तलिफ लोगों की चीज़ों को जमा करता है, अल्लाफ़ा युअल्लिफ़ु तालीफ़, ऐसे चीज़ को मुअल्लिफ़ कहते हैं। यानी ख़ुद नहीं लिखता, दूसरी जगहों से चीज़ें इकट्ठी करता है, यानी हदीसों को जमा किया या कुछ और चीज़ें। बहरहाल एक राइटर कहता है शदायत यानी मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, इनकी शिद्दत और इम्तदाद कैसा ही हो, हमेशा नहीं रहते, बल्कि जितनी ज़्यादा इनकी शिद्दत, गहराई और तारीकी होगी उतनी ही जल्द इनके छट जाने और ज़ायल होने का वक्त करीब होगा। यानी रात जितनी गहरी होती है ना, सुबह उतनी करीब होती है। जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरे आ जाए ना, तो मान लीजिए कि अब छटने का वक्त है इंशाल्लाह। اور یسر، فراخی، کشادگی، خوشحالی اور روشنی آئے گی۔ جب ابتلاء اور آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے، اللہ کی مدد اور احسان بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے، افق سے آفتاب ابھرتا ہے اور گراں خوابی کا دور چلا جاتا ہے۔ ایک ہی ساتھ ہوتی ہے جو جلدی سے گزر جاتی ہے، اور چلتے رہنے والا منزل کا راستہ پا لیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس ساری بات سے کہ زندگی میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا، رات قریب ہے اگر ستارے اب چمک پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غموں کی رات جتنی گہری صبح اتنی قریب۔ اللہ کے ایک نبی نے کہا اور اللہ نے قرآن میں لکھ لیا، علیس الصبح بقریب۔ کیا صبح قریب نہیں؟ مراد یہ تھا کہ قریب ہے۔ دل پر غم کے بادل، کوئی نعمت نظر نہیں آتی، جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی جب دل پہ غم آ جاتا ہے نا، تو بڑی بڑی نعمتیں بھی چھٹ جاتی ہیں ہم سے، ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ پھر غموں کی تاریکی میں بھی شکر کرنے والے ایسے لوگوں کی صبح جلدی آتی ہے۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور نوازوں گا، سورۃ ابراہیم 7۔ ولئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔